धवला पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 4। ओम नमः सिद्धेश। ओम नमः सिद्धेश। ओम नमः सिद्धेश। ओम चौथात्मने नमः। नमो अरिहंतानम्। नमो सिद्धानम्। नमो आयरियाणम्। नमो वर्षायाणम्। नमो लोहे सुवसाहु। लोया लोय पयासं गोदमथेरं पुनोजिनं वीरं नम्यूणखेत्तसुत्तं जहो वये संपयासेमो। आचार्य श्री भीमसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ को लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूत बलिया आचार्य। इसमें प्रथम खंड जो जीव स्थान है उसमें अपना क्षेत्रानुगम का प्रकरण चल रहा है और चौथी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 17 पर हम आ गए। 17 हाँ विशेषांक देख रहे हैं। बात यह हो रही थी कि अधोलोक का यानी पूरे लोक का मृदंगाकार आकार कहने वालों के अनुसार ये लोकाकाश की जो या लोक की जो 343 गणराज्य प्रमाण एरिया घटित नहीं होती है, उसकी बात यहाँ चल रही है कि वो अगर उसको मृदंगाकार मानते हैं तो उसका क्षेत्रफल कितना हो रहा है उसकी बात यहाँ निकाल के बता रहे हैं। 17 नंबर पेज पर इसी का विशेषांक हम देखेंगे जो हमने परसों देखा था। यहाँ पर कल तो नहीं हुआ था अपना, देखो विशेषांक यहाँ पर जो आयत चतुरस्र क्षेत्र की मोटाई क्रमशः 2, 1, 0 और 1 राजू प्रमाण कही है उसका अभिप्राय यह है कि ब्रह्मलोक के पास वाले भीतरी भाग की मोटाई 2 राजू है, उसी के बाहरी भाग की मोटाई 1 राजू है, करण रेखा वाले क्षेत्र की मोटाई 0 या 1 प्रदेश है और कोटि रेखा के भाग वाले ऊपरी क्षेत्र की मोटाई 1 राजू है। ये नहीं समझ ठीक। देखो अभी हम इसको देखते हैं। हमने पहले क्या किया था, अभी अधोलोक का निकाल के बताया, उसके बाद ऊर्ध्वलोक की बात चल रही है। ऊर्ध्वलोक यानी ब्रह्मलोक के पास 5 राजो, नीचे 1 राजो, ऊपर 1 राजो, नीचे 1 राजो और ब्रह्मलोक के पास 5 राजो। अभी उसको जैसे हमने नीचे वेत्रासन को हमने बीच वाली नली निकाल कर और फिर बीच में से फाड़ कर बताया था अपने से उस दिन, फिर हम इसको देखते। देखो पेज नंबर 16 पर देखो, यहाँ लिखा ना चारों ओर से मृदंगाकार नया पैराग्राफ ऊर्ध्व लोक रूप क्षेत्र का घनफल निकालते हैं। तो उसमें से हमने नीचे का देखो 1 राजू चौड़े, 7 राजू लंबे और गोल आकार वाले सूची रूप क्षेत्र का घनफल पहले अधोलोक में निकाला था। देखो क्या कहना चाहते हैं, ऊर्ध्व लोक और अधोलोक की बात हमने देखी थी। ये तो सब एरिया इस तरह घटित करे जो अन्य शंकाकार की मान्यता है उसके अनुसार। अधोलोक का ऐसा गोल और नीचे ऐसा गोल इसके एरिया कैलकुलेट की, उसके लिए पहले वो बीच वाली नली निकाल के और फिर बाजू के जो है उसको सोपा के आकार से स्प्रेड आउट किया। अब ऊपर भी ऐसा ही करना है, ऊपर की जो 1 राजू वाली एरिया है इस तरह से ऊपर है। अभी हमें नीचे की तो एरिया हमने निकाल ली, अब ऊपर की निकालनी है। ऊपर तो यहीं से हम छेद देंगे ऊपर का और नीचे का, यानी अभी हमको कौन सा क्षेत्र मिलेगा, ऊपर 1 राजू चौड़ा है नीचे पांच राजू वाली उसकी व्यास है और ऐसी एरिया है, ऐसी एरिया है, उसमें से पहले एक राजू वाली वो गोलाकार नली अलग से निकालेंगे। इसका कैसे निकालना, ये जो परिधि है मल्टीप्लाइड बाय, ये परिधि को व्यास के चौथाई से गुणा करेंगे तो हमें ये पूरा क्षेत्रफल यहाँ का मिलेगा, गोल का क्षेत्रफल। उसको हाइट से गुणा करेंगे सात राजू तो ये पूरी बीच वाली एरिया, इसका हमको क्षेत्रफल मिलेगा। यहाँ तक बात करने वो कैसे निकालना, मान लेते ये एक राजू है तो करीबन तीन राजू ये होता है परिधि, और करीबन तीन राजू परिधि है तो उसको चार से हमने भाग दिया क्योंकि एक राजू का चौथा भाग, तीन चतुर्थांश ऐसा उसका उत्तर आएगा। परंतु उन्होंने सूक्ष्म निकाला है तो केवल परिधि कितनी थी उनकी, तो 371 बटे 101 कितने थी, 113 था ना, 113 था। अभी उसको नीचे से चार से गुणा करो, इतने उनके ऊपर की क्षेत्रफल आएगा इसका पूरा, और मल्टीप्लाइड बाय सात क्योंकि सात राजू, तो जो कोई संख्या आएगी वो पांच पूर्णांक को बताया ना उन्होंने, नहीं नहीं कहाँ गया, पांच पूर्णांक 337 बटे 452 पेज नंबर 16 पर नए पैराग्राफ की तीसरी लाइन मिला क्या, ये तीन वाक्य फिर पढ़ते हैं सेकंड लाइन से, इसमें एक राजू चौड़े ये बीच वाली नली की बात है, सात राजू लंबे और गोल आकार वाले सूची रूप क्षेत्र का घनफल पहले अधोलोक में कहे गए विधान से निकालने पर इतना इतना होता है, पांच पूर्णांक को यानी इस सूची को उर्ध्वलोक के मध्य भाग से निकालकर पृथक स्थापन कर देना, वो बीच वाली जो उन्होंने गोलाकार त्रसनाली मानी उसको उसके एरिया निकाली। यहाँ तक समझ में आई बात, यदि हम स्थूल रूप से इसका क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो एक राजू उसका व्यास है तो तीन राजू उसका परिधि निकलेगा, और तीन राजू को एक राजू के चौथे भाग से गुणा भाग देंगे तो ये ऊपर के गोल का क्षेत्रफल मिलेगा, और उसी को सात से गुणा करेंगे सात राजू से तो ये पूरा घनफल मिलेगा। यानी हमारे ऐसा अगर हम गणित करेंगे सत्र के 21 चतुर्थांश यानी 4 पंचे 20 पूर्णांक 1 चतुर्थांश, वहाँ यहाँ एग्जैक्ट निकाला 5 पूर्णांक 337 बटे 452 बात वही आई ना, हमने बिल्कुल स्थूल रूप से बताया। तब ये नली निकाल कर इसका घनफल मालूम है उसको अलग रखो, अभी जो रिमेनिंग एरिया है उसका घनफल निकालना है हमको। अब ये रिमेनिंग एरिया कैसी है, अभी वहाँ थिन है, ये एक प्रदेश थिन है यहाँ पर, ये एरिया देखो, यहाँ देखना ये एरिया जो ऐसा गोलाकार है वो एक प्रदेश थिन वाली, वैसे नीचे की भी एक प्रदेश थिन वाली एरिया हमने ऐसे यहाँ, परंतु ऐसी उसकी विड्थ कितनी है सर्वत्र, अभी ये पांच राजू पूरा था उसमें से एक राजू गया बीच का तो ये दो राजू रह गए यहाँ पर, यहाँ तो ख्याल नहीं आती बस। अभी देखो यहाँ ऐसी की है हमने तो यहाँ ऐसा अगर ऊपर लेते हैं तो एक यहाँ से जाएगा ऊपर उसको टच होता है और इधर से यहाँ तक ये लाइन आ गई है, इसको अगर हम स्प्रेड आउट इसे स्ट्रेट लाइन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सरकमफ्रेंस, आधे बाजू की निकालने और यहाँ से यहाँ हो जाएगा पांच राजू का सरकमफ्रेंस यानी उसका भी आधा निकालना, ये पूरा ही स्प्रेड करना है, अच्छा पूरा ही स्प्रेड करेंगे, आधा नहीं पूरा स्प्रेड करेंगे। देखो ये बीच वाला निकल गया है, बीच वाला निकल गया, अभी हमने इसको ऐसा काट के ऐसा स्प्रेड आउट कर दिया तो ऊपर की जो परिधि थी वो पूरी ऐसी आ गई, ये ऊपर की परिधि कौन सी, तीन राजू प्रमाण, करीबन जो तीन राजू प्रमाण थी तीन में जो प्रमाण थी उसके बाद यहाँ आ जाएगी। और नीचे यानी एक को हमने तीन गुना किया करीबन, और नीचे पांच राजु की सरकमफेरेंस निकालने पर अतिरिक्त 15 समझाने के लिए, तो ये 15 हिस्सा हुआ। हमने स्प्रेड आउट कर दिया। अब स्प्रेड आउट कर दिया तो यहाँ तो एक प्रदेश थिन है और नीचे उसका दो राजु है, नीचे से चौड़ाई दो राजु है ना, तो दो राजु चौड़ाई ऐसे एक राजु तक दो राजु चौड़ाई थी, यानी वो तीन राजु तक, परंतु यहाँ तो कैसी टेपरिंग हो जाएगी, यानी ऊपर से नीचे तक ये बीच वाली एरिया ऐसी निकलेगी और ये बाहर वाली, ये अंदर उस पार वाली एरिया है, उस पार वाली एरिया में वो बीच का हमने स्प्रेड आउट कर दिया और बाहर का स्प्रेड आउट कर दिया, तो ये बड़ा हो गया। यहाँ तक बात ख्याल में है, और इसकी विड्थ यहाँ दो राजू हो जाएगी और ये बाजू इसे पेपर थिन हो जाए, यानी वो तो प्रदेश थिन हो जाएगी। अब इसको फिर पढ़ेंगे। देखो, अब लोक को मध्य लोक से काटने पर जो दो भाग पहले हुए थे उनमें से ऊपरी अर्धभाग को, ये ऊपर का अर्धभाग हम आपको दिखा रहे हैं, पांच राजू है विष्कम्भ जहां पर, ऐसे ब्रह्म लोक के अंतस्थित प्रदेश पर बीच से खंडित कर, यानी वो आधा ऐसा काट दिया। ब्रह्मलोक के पास हमने हॉरिजॉन्टल उसको सेक्शन लिया, तो अभी खाली ऊपर का जो आधा मृदंग है उसकी एरिया निकालनी है। उनमें से एक खंड को पृथक स्थापन कर, बचे हुए एक खंड को मध्य में ऊपर से नीचे तक फाड़ कर, अब ये ऊपर से नीचे तक, अब ये तो साढ़े तीन राजू ही है, पहले नीचे हम सात राजू देखते, अब मैंने भी अभी गलती से उसको 7-3-21 ऐसा कुछ बताया था, वो पूरा का पूरा निकाला था तब, पूरा निकाला था तब, अभी अभी हम यहाँ निकालेंगे तो 3.5 राजू इसके हाइट है, ब्रह्म लोक तक 3.5 नीचे 3.5 ऊपर है। अब हम 3.5 की यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, 3.5 में ऊपर का हमने एक राजू का जो डायमीटर था, डायमीटर नहीं परिघ था, सरकमफेरेंस, उसको ऐसा स्प्रेड आउट कर दिया, यानी एक राजू को तीन गुना करेंगे तो तीन राजू करीबन ये हो जाएगा, और नीचे पांच राजू वाले जो सरकमफेरेंस था उसको भी हमने स्प्रेड आउट कर दिया, यानी करीबन 15 हो गया। यहाँ उनकी सूक्ष्म कैलकुलेशन अलग बताएंगे हम बाद में। अब देखो इसको आगे देखते हैं, पसारने से सूपा के आकार वाला क्षेत्र हो जाता है, ये सूपा के आकार वाला क्षेत्र हुआ, ऐसा नीचे ज्यादा है तो कम, इसको सूपा कहा। उसका मुख विस्तार 371/113, अपनी भाषा में उसको हम तीन राजू कहेंगे, तीन गुना है ना, करीबन यानी 22 सप्तमांश गुना करते थे हम उसको, सूक्ष्म उसको देखने पर, यहाँ तो हम स्थूल रूप से देखेंगे, इतना होता है तला तथा तल विस्तार 15.96/113, यानी पांच राजू की परिधि है ये, हमने उसको 15 मान लिया, ऊपर के अपूर्णांक भूल भी जाओ, ऊपर तो तीन हुआ और नीचे ऐसा 15 स्प्रेड आउट हुआ। यहाँ तक बात ख्याल में, आगे बढ़ते हैं। इस सूर्प क्षेत्र के मुख में मोटाई आकाश के एक प्रदेश प्रमाण है, ये उसका मुख है, यहाँ मोटाई कुछ नहीं है तो एक प्रदेश प्रमाण है, क्योंकि हमने केवल वहां तो ऊपर जो था बीच की नली निकाली तो कुछ बचा नहीं बाजू में, इसका एक प्रदेश प्रमाण मोटाई है। समझ में आती बात, क्योंकि जितनी ऊपर की विड्थ थी उतनी हमने उसकी एरिया नीचे तक निकाली, तो ऊपर की जो परिधि उसके बाजू में कोई क्षेत्र नहीं तो एक प्रदेश प्रमाण है। और तल के मुख्य प्रमाण मध्य भाग में दो राजू मोटाई है, ये तल है इसका, तल में यहाँ दो राजू प्रमाण उसकी मोटाई है अंदर, यानी ये दो राजू से ऐसे ऊपर, क्योंकि बीच वाली नली निकाल दी है तो ये नीचे दो राजू प्रमाण ऐसा ऊपर टेपरिंग होकर इसको चिपक गया। पुनः क्रम से हानि को प्राप्त होती है अर्थात कम होती हुई, इसी तलभाग के दोनों कोनों पर आकाश के एक प्रदेश प्रमाण मोटाई है। देखो ये बीच में, क्योंकि बीच वाली जो इतनी जो राजू प्रमाण जो हमने स्प्रेडअप किया था बीच की नली निकाल कर, उसमें तो दो दो राजू का अंतर था, परंतु अभी उसको हमने स्प्रेडअप कर दिया तो यहाँ पर ये जो ये बाजू और ये बाजू जो है वो एक प्रदेश प्रमाण थीन हो जाएगी। ये जो मैं बता रहा हूँ ये वाली उस पार है, उस पार है, और हमने इसको ऐसा स्प्रेडअप कर दिया सरकमफेरेंस, तो यहाँ तो एक प्रदेश प्रमाण यहाँ थिकनेस है, यानी यहाँ की थिकनेस ऐसी ऐसी हो गई है। उसके आगे देखते हैं, इस स्वरूप क्षेत्र को मुख विस्तार प्रमाण विष्कम्भ से खंडित करने पर दो त्रिकोण क्षेत्र और एक आयत चतुरस्र क्षेत्र हो जाते हैं। देखो ये बीच वाली एरिया आयत, साढ़े तीन राजू उसकी हाइट है, यहाँ तीन राजू क्योंकि वो सरकम पर स्प्रेडअप किया था, यहाँ पर तीन राजू, परंतु इसमें क्या है ये केवल ऐसा स्ट्रेट नहीं है, नीचे दो राजू ऐसा वो बाहर आया, यानी ऊपर थीन है परंतु नीचे से ऐसा हुआ, ये दो राजू ऐसा है नीचे का एरिया, यानी ऐसे साढ़े तीन राजू है, ऐसा तीन राजू करीबन है, परंतु नीचे की जो एरिया ऐसी है वो दो राजू है, यहाँ दो राजू और यहाँ एक प्रदेश थीन। तो उसको अगर हम एवरेज निकालेंगे तो दो राजू का आधा करो एक राजू हो जाएगा, यानी कैसे ऐसा तीन राजू, ऐसा साढ़े तीन राजू, और ऐसा अगर हम इक्वल उसकी गिनेंगे तो एक राजू हो जाएगा। तो ये बीच वाले आयत का क्षेत्रफल अभी बताएंगे घनफल। तो ये बाजू वाले दो त्रिकोण हो गए, यानी यहाँ तो उसकी तो ये ऐसी मिली, और ये बाजू वाले त्रिकोण अलग और ये बीच वाला आयत अलग, समझ में आई बात। आयत में क्या विशेषता है, नीचे बेस है दो राजू का और ऊपर साढ़े तीन की हाइट है और एक बाजू टेपरी। तो दो त्रिकोण एक आयत होता है, उनमें से पहले आयत चतुर्थ क्षेत्र का जो साढ़े तीन राजू लंबा है, समझ में है ना, कैसे ऊपर से ब्रह्मलोक पर तीन राजू से कुछ अधिक, अर्थात 3.32/113 जो हमने 371/113 वही उसी का ये है, राजू चौड़ा है। तल में दो राजू और मुख में एक आकाश प्रदेश है, ये समझ में आती है बात। जैसे ये जो त्रिकोण है, ये जो हमने एक राजू को स्प्रेड आउट किया तो ये समझो तीन राजू, ये ऐसे साढ़े तीन राजू, नीचे दो राजू है, नीचे दो राजू और ऊपर एक प्रदेश तीन है, तो उसका एवरेज उन्होंने एक राजू निकाला। ऐसे उस आय चतुर्थ क्षेत्र का घनफल निकालते हैं, वही इस प्रकार है, विष्कम्भ जो 3.समथिंग है उससे उससे साढ़े तीन को गुणा कर, पुनः उसे मोटाई के प्रमाण एक राजू से गुणा करने पर, एक राजू क्यों, क्योंकि दो राजू प्लस जीरो तो दो हुआ डिवाइडेड बाय टू, एक राजू उसका एवरेज मिला। जीरो ने एक प्रदेश को हमने जीरो कहा ना, एक राजू है और एक प्रदेश है, एक प्रदेश को जीरो कहो ना, तो दो यहाँ एक राजू है या कुछ नहीं है, सिंगल प्रदेशी लाइन है वो, तो उसको हमने एवरेज निकाला तो एक राजू हो जाएगा। एक ख्याल में आती बात, तो इतना जो एरिया है उसके बीच वाली एरिया उसका घनफल मिला हमको, तो वो कितना आता है, तो देखो 371/113 गुणा 7/3 और गुणा 1/1 वो 11.111/226 हुआ। यहाँ तक समझ में आई बात, बीच वाली एरिया निकाली। अभी जो शेष दो त्रिकोण है जो कि साढ़े तीन राजू ऊंचे है और एक राजू को 113 से खंडित कर उनमें 32 खंड से अधिक 6 राजू इतने चौड़े हैं। देखो ये कैसे निकाला उन्होंने, अभी अपने गणित देखो, हमने नीचे की ये जो पूरी एरिया कितनी देखी थी, 5 राजू का सरकमफेरेंस था, हमारी भाषा में 5 × 3=15 थे, 15 में से हमने 3 निकाले बीच वाली एरिया, क्योंकि वो उसमें आयत में हमने उसका निकाला, तो 15 में से 3 गए, कितने रहे 12, उसमें से 6 यहाँ और 6 यहाँ, अभी हमें जो एरिया रह गई है वो ऐसे दो, इधर तो दो राजू उसकी चौड़ाई है, यह एक प्रदेश तीन है, यानी ऐसा हुआ है नीचे से और ऊपर से भी ऐसा हुआ है, यानी अभी उसकी दूसरी लाइन ऐसे हम ड्राइंग करेंगे। जैसे हमने इसका बाजू, ये बीच वाला निकाला, इसके बाजू वाला कैसा रहेगा, तो यहाँ जो ये तीन राजू था उसके आगे यहाँ छह राजू, और इसकी लाइन ये थिन हो जाती है, यहाँ पर यहाँ से ऐसे निकल कर यहाँ थिन हो जाती है, और यहाँ से निकल कर यहाँ पर भी थिन हो जाती है, ऐसा वाला ट्रायंगल है बीच में, तो ऐसा दिखेगा बाहर से एक प्रदेश थिन दिखेगा, यहाँ आगे वाले छह राजू प्रमाण होगी और यहाँ से उसको ऐसे लाइन टच हो जाएगी, वो एक प्रदेश प्रमाण रह जाएगी। ख्याल में आते, इसके इमेजिन करना पड़ेगा जरा। तो ये छह कैसे आए समझ में आई ना, बीच वाले माइनस करो और दो ट्रायंगल है उसमें आधा आधा दे दो, तो करीबन छह पूर्णांक समथिंग वही उत्तर आया। उनमें पहले के समान ही मध्य में से खंडित कर उनमें उत्पन्न हुए चार त्रिकोण क्षेत्रों को दूर रखकर, अभी यहाँ क्या किया जो हमने उस दिन किया था, अभी देखो ये बात है ना, यहाँ से ये उसका कर्ण है, एक भुजा है और एक ये छह है, ये साढ़े तीन है। अभी क्या करना, कर्ण के बीचों बीच ऐसी ऐसा एक आयत तैयार करना, ऐसा वाला, और उसकी एरिया कैलकुलेट करना। देखो यहाँ कैसी है, यहाँ तो इसको यहाँ दो राजू इसको थिकनेस है, और यहाँ उसकी थिकनेस आधी हो गई क्योंकि यहाँ एक प्रदेश थी, पर यहाँ पर उसकी थिकनेस आधी हो जाएगी दो राजू से एक राजू, यानी ये स्क्वायर कैसा होगा, ये यहाँ दो राजू एक, ये इसका बेस है और ऊपर यहाँ छह राजू है, तो करीबन यहाँ तीन राजू आ जाएगा उसका। और इसका भी कैलकुलेशन कैसे करना, इसका ऐसा बेस कम हो जाए, यहाँ पर भी ऐसा उल्टा हो रहा है, अभी उसके एक दूसरे में फिट करो, फिट करो तो ऐसा हो जाएगा, ये भी दो राजू और ये भी दो राजू, ये दोनों का फिटनेस ऐसा कर दिया और ऐसा उसका आयत हो जाएगा, तो साढ़े तीन का आधा उसकी हाइट हुई, ये छह का आधा तीन ऐसा हुआ, और अंदर उसकी जो अंदर की विड्थ है वो दो राजू उसकी एवरेज हो गई, दोनों का मिलाकर इधर का और इधर का मिलकर ऐसा हो गया। अभी उसकी एरिया की कैसी होगी, साढ़े तीन का आधा ये तीन और वो दो, इनका गुणाकार करना पड़ेगा। अब उसको बता रहे हैं दो
कर्ण, यानी क्या?
हाँ हाँ,
कर्ण शब्द है ना,
कर्ण जो शब्द है ना, आपको ट्रायंगल मालूम है ना, त्रिकोण, हाँ तो त्रिकोण में एक होती है, एक जो सिंगल ऊपर से नीचे तक लाइन है उसको हम कहेंगे कोटि, दूसरी लाइन को देखे कहेंगे भुजा, त्रिकोण की तीसरी जो बाजू है जो लंबी होती है सबसे, नहीं समझे, रेगुलर जो त्रिकोण भूमिति का त्रिकोण आप आंखों के सामने लाना, उसके ये नीचे से ऊपर तक खड़ी लाइन एक है और दूसरी लाइन है नीचे, काटकोण त्रिकोण आप इमेजिन करो, एक खड़ी लाइन है, एक आड़ी लाइन है और एक तिरछी लाइन है, तिरछी लाइन जो लंबी है उसको कर्ण कहते हैं। हाँ समझ में आई ना बात,
हाँ हाँ वैसे आपको इमेजिन करना पड़ता है, चिंता नहीं ना, आप बता रही
है। हाँ नहीं, मुझे लगा ये स्कूल में हम वो कर्ण वगैरह सीखे थे ना, अभी वो भूल गए। हाँ कोटी ने, एक बाजू को कोटी कहते हैं, एक बाजू को भुजा कहते हैं, जैसे रेक्टेंगल में भी ऐसा ही होता है, चौकोर कोई बाजू है लंबा चौकोर, एक किसी बाजू को कोटी कहते हैं, एक बाजू को भुजा कहते हैं। चौकोर में तो दो कोटी और दो भुजा आते, आमने सामने वाली दो कोटी कहेंगे, आमने सामने वाली दो भुजा कहेंगे, ख्याल में है बात। जैसे आपके बुक है ना सामने, तो ऊपर से नीचे तक हम उसको भुजा कहेंगे, तो नीचे आड़ी लाइन और ऊपर की आड़ी उसको हम कोटी कहेंगे। हाँ अभी आगे देखते हैं, यहाँ पर एक आयत चतुरस्र का वो अभी एरिया बता रहे हैं, पौने दो राजू ऊंचाई। पौने दो कैसे आए कोई बता सकेंगे? साढ़े तीन का आधा हाइट में हमने आधे में उसको आयत बनाया था। देखो बाजू के जो ट्रायंगल थे ना, बाजू के ट्रायंगल हमने आधे में आड़ी लाइन की और फिर आधे में उसकी वर्टिकल लाइन की, तो उसमें से एक चौकोर निकाला आयत चतुष्कोण। ये रेक्टेंगल देखो, ये साइड वाला जो त्रिकोण था ऐसा, उसमें मध्य में हमने आड़ी लाइन की और उसी मध्य से नीचे भी एक आड़ी खड़ी लाइन की, तो जो नीचे के बेस में भी आधे में टच करके वर्टिकली भी आधे से लाइन है और नीचे भी आधे से लाइन है, तो उसके एरिया भी हमको कैलकुलेट करनी है। तो ये हाइट वाइज साढ़े तीन था, उसका आधा पौने दो हुआ। अब देखो आगे, 113 से एक राजू को खंडित कर उसमें 16 खंडों से अधिक तीन राजू, अर्थात तीन पूर्णांक जो राजू प्रमाण चौड़े, कैसा कि हमने नीचे के पास हमने 6 पूर्णांक समथिंग देखा था, उसके आधे में देख वो तीन पूर्णांक समथिंग आ गया। वो ऊपर के फिगर साफ छोड़ दो, साढ़े तीन का आधा पौने दो, ये 6 का आधा तीन, और दो आयत हमने एक दूसरे में फिट कर दिए, तो उसका एवरेज ये कैसा है, कैसा चौड़ा है, 210 और एक राजू मोटे, उनको घनफल को निकालते हैं। क्योंकि 210 का अर्थ क्या है, ये दो राजू था नीचे का एक चौकोर की बात, आधे में उसका यहाँ से लेकर यहाँ एक प्रदेश पर जाने वाला है, तो सेंटर में वो एक राजू होगा, एक बाजू दो राजू एक ये एक राजू, और फिर दूसरे की बात है वो भी ऐसा ही उसको उल्टा रखो, और एक प्रदेश थिन है ये बाजू है वो एक प्रदेश थिन है, इसलिए दो एक और सिंगल प्रदेश है सर, यहाँ लिखा ना 210 और एक राजू मोटे हैं, इसका अर्थ समझ में आती है? तो दो स्क्वायर एक दूसरे के ऊपर फिट कर दिए, तो एग्जैक्ट दो राजू बाय दो राजू की एरिया मिली, इसलिए साढ़े तीन का आधा, 6 का आधा और दो राजू, इन तीन की आपस में गुणाकार करने पर आयत का हमें दोनों बाजू के आयत का घनफल मिला। यहाँ तक समझ में आई? क्योंकि इधर का एक आयत और इधर का आयत हमने एक दूसरे में फिट किया है। अब देखो उसी का विशेषार्थ देख रहे हैं यहाँ पर, अभी इसका विशेषार्थ पढ़ेंगे, ये तो बात हमने कल पढ़ी थी। वैसे देखो विशेषार्थ यहाँ पर जो आयत चतुरस्र क्षेत्र की मोटाई क्रमशः 210 और एक राजू प्रमाण कही है, उसका अभिप्राय यह है ब्रह्मलोक के पास वाले भीतरी भाग की मोटाई दो राजू है। भीतरी भागे ने जहाँ हमने बीच वाली एरिया निकाली थी ना, वहाँ तो दो राजू थी, उसी के बाहर की मोटाई एक राजू है, क्योंकि हमने वो आयत चतुर्थ से आधे में किया है, तो ये ऐसा टेपरिंग होते होते एक प्रदेश प्रमाण होने वाला है, तो बीच में उसको एक राजू मोटाई हो गई। उसी के बाहरी भाग की मोटाई एक राजू है, कर्ण रेखा वाले क्षेत्र की मोटाई शून्य या एक प्रदेश है। कर्ण रेखा वाली यानी अभी ऐसी जो ट्रायंगुलर ऊपर चाहिए उसकी, यानी ये कर्ण रेखा थी यहाँ पर, ये एक प्रदेश वाली थी क्योंकि ऐसी थीन होती गई, और कोटी रेखा वाले भाग की ऊपरी क्षेत्र की मोटाई एक राजू, यानी इसमें किया है तो ये वाली अंदर वाली ऐसी। वह इस प्रकार है, फिर बता रहे ये विशेषार्थ की बात भूल जाओ, ये इस प्रकार है वो ऊपर के पैराग्राफ से लगती हुई बात, गणफल को निकालते उसके बाद ही वह इस प्रकार है। एक आयत चतुरस्र क्षेत्र के ऊपर दूसरे आयत चतुरस्र क्षेत्र को उल्टा करके रखने पर दो राजू की मोटाई वाला एक क्षेत्र हो जाता है। ये चित्र बताए उन्होंने पहले स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में, शुरू के पुस्तक के 4-5 पेज निकालो उसके आगे है। ये जो नीचे की एरिया, हाँ सेकंड पेज देखो, पहले तो वो सूर्पाकार कैसे किया वो बताया, उसके आगे के पेज पर देखो, ये 2 और 5 नंबर का देखो चित्र, भी ऊपर से राइट साइड का उसको आकृति नंबर 8 के नीचे वाली आकृति देखो, तो दो आयत चतुरस्र कैसे एक दूसरे के ऊपर फिट किए वो दिखाए, वैसा है उसमें समझना, इधर का एक और इधर का एक, जो अभी हम कैलकुलेट कर रहे थे ना ऊपर के आकृति नंबर 8 में, वो 2 नंबर और 5 नंबर का आयत चतुरस्र है, वही बात यहाँ कैलकुलेट कर, ये एक दूसरे में फिट करने से पूरा ऐसा क्यूबिकल शेप हो जाता है, केवल इमेजिन ही करना है हमको अभी। हाँ आगे देखते हैं, अपना पेज नंबर 17 निकालना नीचे, पुनः विषकंभ और उच्छेद का संवर्ग अर्थात परस्पर गुणन करके मिला, पेज नंबर 17 लास्ट लाइन, वेद से गुणा करने पर उक्त क्षेत्र का घनफल होता है जिसका प्रमाण है, ये 7 द्वितीयांश का आधा किया तो 7 चतुर्थांश हो गए, 355/113 ने जो हमने तो 6 का आधा किया था वो 3 राजू करीबन 3 से थोड़ा ज्यादा, और 2 जो है 2 आयत का मिलकर हमने जो प्रमाण 2 राजू बनाया था वो सबका प्रमाण आता है 10 पूर्णांक 225/226 226 अस्पष्ट दिख रहा है। हाँ 226 है नीचे, इतना होता है। पुनः जो शेष 4 त्रिकोण क्षेत्र है उसका घनफल इस आयत चतुरस्र क्षेत्र के चतुर्थ भाग मात्र होता है, इसका कारण सुगम है क्योंकि अधोलोक की प्ररूपणा में कहे आए, वहां हमने देखे थे उसके एक आयत निकाला फिर उसमें और निकाला फिर उसमें और निकाला, इस करते करते चतुर्थ भाग प्रमाण। चूंकि इस प्रकार सर्व त्रिकोण क्षेत्रों के घनफल अनंतर अतिक्रांत अर्थात अभी पहले बताए गए क्षेत्रों के घनफल से चतुर्थ भाग के क्रम से अवस्थित है, इसलिए उनके घनफल को यहाँ अर्थात 10 पूर्णांक 225/226 में मिलाने पर चार पूर्णांक 448/678 दिखता है क्या वो कितना प्रमाण, 14 पूर्णांक 448/678 इतना प्रमाण हो जाता है। ऊर्ध्वलोक का समस्त घनफल, ये तो उन्होंने अभी त्रिकोण का निकाला, उसमें बीच का आयत, इन्हें 2 त्रिकोण का लेना पड़ेगा मिलाकर, इतना आयत का इतना सब मिलाकर ये बात है, और बीच वाली जो हमने एरिया नली निकाली उसका देखो, उसको फिर बताएंगे यहाँ पर। ऊर्ध्वलोक का समस्त घनफल 58 पूर्णांक कितना होता है, अब विशेषार्थ में इसी को बता रहे हैं। ऊर्ध्वलोक का यह घनफल इस प्रकार आता है, पहले जो प्रमाण बतलाया गया है वह प्रमाण ऊर्ध्वलोक के विभक्त किए गए 2 भागों में से 1 भाग का है, इसलिए दोनों खंडों का घनफल लाने के लिए आयत चतुरस्र क्षेत्र के घनफल को दूना किया, यानी हर एक को अलग अलग दूना किया, तब 11 पूर्णांक जो था उसको दो गुणा किया तो 22 पूर्णांक वो आया, तथा त्रिकोण क्षेत्रों का भी घनफल दुना किया तो ये 14 पूर्णांक जो था उसको भी दो गुणा किया तो इतना हुआ 29 पूर्णांक समथिंग। इस प्रकार ऊर्ध्व लोक की सूची का, सूची की अलग ही बात बताई थी, 5 पूर्णांक समथिंग आयत चतुरस्र का और त्रिकोण क्षेत्रों का समस्त घनफल जोड़ देने पर ये 5 पूर्णांक 337 बटे 452 प्लस 22 पूर्णांक 222 बटे 226 प्लस 29 पूर्णांक 218 बटे 678 सब मिलकर 58 पूर्णांक 67 बटे ये 1356 चाहिए, यहाँ 1326 गलती से पड़ा है, दो की जगह 5। ये तो ऊर्ध्वलोक का समस्ता है और पहले हमने अधोलोक का निकाला था। ऊर्ध्वलोक और अधोलोक का घनफल जोड़ देने पर 106 पूर्णांक 261 बटे 1356 प्लस 58 पूर्णांक 67 बटे 1356 दोनों को मिलकर 164 पूर्णांक 328 बटे 1356 इतना प्रमाण होता है। और हमने कितना लिया है, 343 लोकाकाश का घन कितना है, 343 घनराजो, और अभी जो हमने कैलकुलेट किया तो 164 पूर्णांक समथिंग आया, यानी उसका संख्यात्वा भाग आया, बस इतना बताने के लिए इतने कैलकुलेशन किए। इसलिए अन्य प्रकार से माना हुआ लोक, अन्य प्रकार के ना वो मृदंगाकार गोलाकार मानने वाले घन लोक के संख्यात्वे भाग प्रमाण सिद्ध हुआ, क्योंकि घन लोक की संख्या मालूम है, 7 राजगुना 7 राजगुना 7 राजु, घन लोक का प्रमाण तो निश्चित है, और अगर उसको मृदंगाकार मानते तो उसका घन क्षेत्रफल जो आता है वो कम आता है, संख्यात्वे भाग आता है। और इस लोक के अतिरिक्त 7 राजों के घन प्रमाण लोक संज्ञक अन्य कोई क्षेत्र है नहीं, जिससे कि प्रमाण लोक 6 द्रव्यों के समुदाय रूप लोक से भिन्न माना जावे, और न लोकाकाश तथा अलोकाकाश ही स्थित 7 राजों के घनमात्र आकाश प्रदेशों के प्रमाण की घन लोक संज्ञा है, ऐसा मानने पर लोक संज्ञा के यादृच्छिक पने का प्रसंग प्राप्त, यादृच्छिक यानी चाहे जैसा मानना,
जैसी इच्छा
है, हाँ जैसी इच्छा है। फिर शंका कर, यदि लोक संज्ञा को यादृच्छिक पने का प्रसंग प्राप्त होता है तो हो जाओ उसका समाधान, नहीं, क्योंकि संपूर्ण आकाश, जगत श्रेणी, जगत प्रतर और घनलोक सभी संज्ञाओं को भी यादृच्छिक पने का प्रसंग आ जाएगा, यानी उसका प्रमाण भी बदल जाएगा, इच्छा प्रमाण उसका भी प्रमाण अन्य मानना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि प्रतर समुद्घातगत केवली कितने क्षेत्र में रहते हैं, वे लोक के असंख्यात भाग से न्यून सर्वलोक में रहते हैं। लोक के असंख्यात भाग से न्यून सर्वलोक का प्रमाण ऊर्ध्वलोक के कुछ कम तीसरे भाग से अधिक दो ऊर्ध्वलोक प्रमाण है। इस प्रकार ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा इस साधिक दुगुणता का कथन अन्यथा बन नहीं सकता था, अतएव प्रमाण लोक और द्रव्य लोक इन दोनों लोकों का एकत्व सिद्ध हुआ, जो प्रमाण संख्या में जिसको लोक कहा है और जो द्रव्य लोक है वो एक ही है, उसका प्रमाण अलग अलग नहीं हो सकता, ये कहना चाहते हैं। विशेषार्थ, यहाँ पर प्रतर समुद्घात के भी, प्रतर समुद्घात समझते हैं, पहला दंडा है ऊपर से नीचे तक दंडाकार फैलाता है, दूसरा है कपाट, जितने उसकी थिकनेस है शरीर की उतने ऐसा आड़ा फैलता है, तीसरे में आगे पीछे, परंतु वात बले को छोड़, वात बले कौन सा, आउटर साइड का वात बले है, जो लोक के तल में है, साइड में है, ऊपर है, सबके एरिया गिनकर उतने एरिया छोड़ना है एक बार, तो वो कितने होता है कि प्रतर समुद्घात केवली के क्षेत्र का प्रमाण, क्षेत्र कर जो उन्होंने ऑक्यूपाई किया उसकी बात है, जो छोड़ा है उसकी बात नहीं, जो ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा, दो ऊर्ध्वलोक और उसी के कुछ कम तीसरे भाग से अधिक बताया है, दो ऊर्ध्वलोक प्लस तीसरा भाग कुछ कम। उसका अभिप्राय यह है, ऊर्ध्वलोक का प्रमाण 147 घनराजु है। ऊर्ध्वलोक का एरिया कैसे निकालेंगे? देखो ऊर्ध्व केवल ऊर्ध्वलोक, ऊपर एक राजू है, बीच में पांच राजू है, फिर नीचे एक राजू है, एक दो तीन जगह, तो एवरेज कितना निकलेगा?
पीछे
पांच प्लस एक सात और डिवाइडेड बाय थ्री एक हो गए, हाइट उसकी सात और ऐसे अंदर सात, तो सात गुना सात गुना सात 343 हो ना, डिवाइडेड बाय तीन ये कैसा है? एक मिनट, वन तीन एक तीन नहीं नहीं कहीं तो गलती हो गई मेरी, एक पाँच और फिर एक, एक और पाँच, एक पाँच पाँच एक ऐसा लेना पड़े, हाइट तो सात बराबर है। देखो ऐसा कैलकुलेट करते पाँच और एक को लेते, आधे को फिर दुगुना करेंगे, यहाँ पाँच और है यहाँ एक है, छः है और छः का आधा तीन हो जाता है, तो इसको तीन मानेंगे और फिर तीन से दुगुना छः करना पड़ेगा। साथ ही साथ 147 इंटू दो हो जाएगा ना, उसे दोनों पड़े 294 होता है, कल में ना उसका दुगुना किया, सात गुना सात गुना छः पांच गुना छः, ये वही है, हमने तीन से गुना किया उसको, इसका एवरेज निकाला थी, डायरेक्ट छः से गुना करते हम तो 296 आ जाएगा, क्योंकि हमने तीन जगह नहीं निकाला, वो नीचे का ऊपर का अलग अलग निकाला, यानी उसमें वन प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस वन ऐसा लेना, पाँच दूनी दाना दोन बारह चा आधा, ऊपर और नीचे का अलग अलग कैलकुलेट करना है। यहाँ तक समझ में आई? 294 घनराजु, इसमें 147 का त्रिभाग, उनचास घनराजु के जोड़ देने पर 343 घनराजु होते हैं, जो कि घनलोक का प्रमाण है। प्रतर समुद्घात केवली लोकांत में स्थित वात वलय से रुद्ध क्षेत्र को छोड़कर, लोकांत ने लोक के अंत भाग में शेष संपूर्ण क्षेत्र को व्याप्त कर लेते हैं, बीच वाले जो पृथ्वियों के नीचे बात वाले वो तो सब अकुपा करेंगे, केवल बाहरी जो लपेटा हुआ जो एरिया है उसको छोड़ेंगे, इसलिए 343 घनराजों में से वात वलयों से रुद्ध क्षेत्र को कम कर लेना चाहिए, यही यहाँ पर देशोन क्षेत्र का अभिप्राय है। ऊपर बात आई थी ना, असंख्यात भाग से न्यून है लोक से, उसकी एरिया कितनी होती है? ऊर्ध्वलोक के कुछ कम तीसरे भाग से अधिक दो ऊर्ध्वलोक लिया, ऊर्ध्वलोक का प्रमाण 147 लेते हैं और दो ऊर्ध्वलोक 294 हो, पूरे ऊर्ध्वलोक का 147 ही लिया उन्होंने, 147 यानी उसकी एरिया तीन दूनी छह नहीं पकड़ी, तीन ही पकड़ी पूरी, नहीं समझे? फिर से एक और ये पांच इतना ही लिया, उसका एवरेज उन्होंने तीन लिया, एक है ये पांच है, ये ढाई है, उसका उल्टा करो, उसमें ये ऊपर का आधा, ये ऐसा फिट करेंगे तो तीन तीन ऐसा हो जाएगा ब्रह्मलोक के ऊपर का, नीचे का भी ऐसा ही हो जाएगा, ये हमने फिट किए तो ये तीन हो गया। ऐसे अंदर सात है और हाइट भी सात है, सात इंटू सात इंटू तीन बराबर है, पूरे उर्दो लोग का 147 आता है। आगे है क्या? चित्र तो यहाँ नहीं, आगे हाँ ये विशेषार्थ में बताया बराबर है। मैंने पूरे ऊपर से नीचे हम सात पकड़ रहे ना, हमने आधा नहीं पकड़ा था तभी, हमने पूरे सात की एरिया ली थी और तीन उसका जो प्रमाण लिया था, तो इधर का जोड़ के वो तीन राजू बाय सात राजू बाय दक्षिणोत्तर सात राजू ऐसा उसका क्यूब बनेगा, यानी 147 वो ऊर्ध्व लोक का प्रमाण है, दो गुना ऊर्ध्व लोक 294 और उसका त्रिभाग 147 का त्रिभाग उसमें जोड़ दिया। इसलिए कुछ कम त्रिभाग लिया था, हाँ प्रतर कर लिया। अभी उसके बाद अभी यहाँ निकाल के बताएंगे, देखो इसलिए नीचे से तीसरा पैराग्राफ, उक्त प्रकार से प्रमाण लोक और द्रव्य लोक के एक सिद्ध हो जाने पर प्रमाण लोक छह द्रव्यों के समुदाय वाले लोक से, देखो प्रमाण लोक यानी जो द्रव्य प्रमाण में जिसको हमने उपमा मान में जिसको हमने लोक कहा था वो प्रमाण लोक, यानी लोक का प्रमाण जो 343 घन राजू कहा था, और छह द्रव्यों का समुदाय वाला जो लोक है वो एक ही बात है, लोक से आकाश के प्रदेश गणना की अपेक्षा समान है, ऐसा अर्थ स्वीकार करना चाहिए। ये समझ में आती बात, जो प्रमाण लोक जो हमने जगत श्रेणी जगत प्रत्यय जगत ये जो घनाघन धारा में जो हमने संख्या बताई थी, हाँ लोक जो घनाघन धारा में आते और जो हम छह द्रव्यों के समुदाय रूप लोक कहते प्रमाण की अपेक्षा एक ही सेम है, उसमें क्या गिनते हैं आकाश के प्रदेशों की संख्या गिनते हैं। शंका, पिंड रूप से एकत्रित करने पर अर्थात घन रूप किया गया यह लोक सात राजू के घन प्रमाण कैसे हो जाता है? ठीक है, जो अलग अलग उसका शेप है उसको ऐसा ऐसा सभी ओर से उसको इक्वल किया तो सात राजू बाय सात राजू बाय सात राजू का घन कैसा आता है? उक्त शंका का उत्तर कहते हैं, जो सर्व आकाश, हाँ द्रव्य लोक यानी जिसमें छह द्रव्य रहते वो लोक ना? और प्रमाण लोक यानी जो हमने संख्या मान और उपमा मान में जो द्रव्य प्रमाण संख्या बताने के लिए जो लोक कहते वो लोक, प्रमाण यानी प्रमाण उसकी संख्या, तो दोनों एक ही बात है। प्रमाण लोक में हमको गिनती करनी है संख्या की और द्रव्य लोक में आकाश के प्रदेश कितने उसको देखना है कि जहाँ छह द्रव्य रहते हैं, संख्या की अपेक्षा दोनों समान है। अभी नीचे का समाधान, उक्त शंका का उत्तर कहते हैं, जो सर्व आकाश के मध्य भाग में स्थित है, आकाश द्रव्य जो है थ्री डायमेंशन उसके एग्जैक्ट बीचों बीच है, 14 राजू आयाम वाला है यानी हाइट उसकी 14 राजू है, दोनों दिशाओं के अर्थात पूर्व और पश्चिम दिशा के मूल अर्धभाग त्रिचतुर्भाग और चरम भाग में यथाक्रम से यानी पूर्व पश्चिम उसका जो विस्तार है उसमें मूल में सात अर्धभाग में एक यानी मध्य लोक के पास एक राजू, फिर त्रिचतुर्भाग यानी ऊपर के आधा का आधा वहाँ ब्रह्मलोक के पास पांच राजू और एकदम ऊपर एक राजू। जो हम लोकाकाश का सामने का व्यू हमेशा देखते हैं वह ऐसा है, इतने विस्तार वाला है। तथा सर्वत्र सात राजू मोटा है, मोटा है यानी दक्षिणोत्तर अंदर जो फैला हुआ उसको सात राजू। जैसे बक्सा है अभी मेरे पास, ये टेलीफोन का बक्सा है, तो जैसे हम उसको वर्टिकल ऐसा रखेंगे, यहाँ एक राजू है, यहाँ एक राजू, ये यहाँ बीच में एक राजू है, नीचे सात राजू है और बीच में यहाँ पांच राजू है और ऐसा अंदर सात राजू है। वृद्धि और हानि के द्वारा जिसके दोनों प्रांत भाग स्थित है, प्रांत भाग क्या है, प्रांत भाग सवत सत्य राजो बाहुल्यो वड्डी हानि ही दिट्ठो पेरंतो। वृद्धि हानि के द्वारा जो है ना, उन्होंने कॉमा पहले दिया था। देखो प्राकृत में देखो लास्ट लाइन चरिमोसी सत्येक पंचेक रज्ज रुंदो सौवत्थ सत्त रज्जु बाहल्यो वड्डी हानि ही दो पेरंतो। नीचे लिखते हैं, फुटनोट देखते हैं, उदय दलम आयाम वास हुआ वरेण भूमि मुहे। सत्य कपंच एक रज्जु मच्छमी हानि चयम, यानी जो सात एक पांच एक ये वृद्धि और हानि चयित है। यानी उसके तो वृद्धि हानि सहित ये भाग स्थित है, इतना ही। चौदह राजू लंबी, पेज नंबर 20 पर आ गए हैं। एक राजू के वर्ग प्रमाण मुख वाले, यानी एक राजू वह एक राजू वर्ग है ना उसका। लोक नाली जिसके गर्भ में, ये भी गोल नहीं है, ये भी चौकोर है। ऐसा यह पिंड रूप किया गया लोक सात राजू के घन प्रमाण अर्थात सात गुना सात 343 राजू है। ऐसे भी कैसे एरिया निकाली, हाइट तो उसकी 14 है, यानी 14 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय दक्षिणोत्तर सात है, यानी 14 गुना सात हुए। अब ये कहीं सात है, कहीं एक है, कहीं पांच है, कहीं एक है, चार जगह की एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। सात प्लस एक आठ प्लस पांच 13 प्लस एक 14, तो चार जगह की इसलिए डिवाइडेड बाय चार, यानी हमारा कैसा है 14 चतुर्थांश अभिज्ञा, हाइट 14 और सर्वत्र भी 7, तो 14 चतुर्थांश किया और इंटू 14, तो उसके बदले हम 7 गुना 7 लिखेंगे। समझ गए ना, हाँ नीचे चार था ना, उसे दो दो से इधर भाग दे दो से इधर भाग दो, यानी सात गुना सात आ गया। विशेषार्थ लोक का पूर्वोक्त विस्तार इस प्रकार है, लोक सर्व आकाश के मध्य में स्थित है, उसका आयाम 14 राजू है, यानी लंबाई उसकी हाइट। पूर्व पश्चिम तल भाग 7 राजू, लोक के आधे अर्थात 7 राजू ऊपर जाकर मध्य लोक में एक राजू, लोक के पौने भाग अर्थात 10.5 राजू ऊपर जाकर यानी मध्य से 3.5 जाकर ब्रह्म लोक में 5-5 राजू, 5-5 क्यों लिखा, 5 राजू और पूरे 14 राजू ऊपर जाकर लोक के अंतिम भाग में एक राजू विस्तार है। वो दो बार 5 नहीं चाहिए, ब्रह्म लोक में 5 राजू। ये तो पश्चिम पूर्व पश्चिम हुआ, लोक का उत्तर दक्षिण विस्तार सर्वत्र 7 राजू है। इस प्रकार के लोक के बीच एक राजू चौड़ी चतुष्कोण और 14 राजू ऊंची त्रसनाड़ी है। ये त्रसनाड़ी को भी कुछ कम 13 राजू बताने वाले ऐसा वहां आता है कहीं कहीं, कुछ कम 13 बताने वाले हैं क्योंकि नीचे का वो नीचे निकाल देते हैं, परंतु त्रसनाड़ी 14 राजू कहेंगे नहीं ना, पर वहाँ भले नहीं रहेंगे त्रस फिर भी उसको त्रसनाड़ी में ही नहींगे उसको निकालने के।
इधर से एक राजू
एक राजू और हाइट 14 राजू
और ये जो नीचे का 7 राजू है
वो उसके सेंटर में आएगी ना वो,
उसके सेंटर में
ऊपर से देखेंगे मध्य में आएगी एकदम,
तो मध्य लोग इधर ही है, ये बाजू 7 राजू का वो आधा इधर और आधा इधर उसमें नहीं,
उसमें कोई द्वीप समुद्र नहीं है, वो तेरे क्षेत्र कहेंगे उसको भले, परंतु त्रसनाड़ी वाली एरिया एक राजू का एक राजू है, उसके अंदर सारे द्वीप समुद्र है, उसके बीच में त्रसनाड़ी के बीच में। कौन सी बात, कुछ कम 13 राजू उसमें आता है, उसमें भी आता है, भूगोल में भी पूछा ना किसी ने कि हमने कुछ कम 13 पूछा था, वो नीचे के जो राजू वाली एरिया है उसको माइनस करके बताते हैं, परंतु सर्वत्र त्रिलोक सार में भी 14 राजू की बात आती है, वो होती है उसमें त्रस नहीं है, वो बात सही है, क्योंकि त्रस नाली तो पूरी कहलाती, अभी भी हमने पढ़ा ना, ये तो मूल पुस्तक की बात है ना, 14 राजू ऊंची मूल में बताया ना, 14 से राजू आए थे, ये बात हो रही है। लोक का आकार बता रहे, तो 343 घन राज्य कैसा होता है, पूर्व पश्चिम विस्तार 3 अधिक है, दक्षिणोत्तर सर्वत्र 7 है, हाइट उसकी 14 है, और उसके बीचों बीच एक राजू वाली त्रसनाड़ी। 20 पेज पर विशेषार्थ पढ़ते हैं, ये पढ़ा अभी हमने, विशेषार्थ पढ़ा, विशेषार्थ के जो पैराग्राफ के नीचे से दूसरी लाइन है, पूर्व पश्चिम भाग में लोक घट बढ़ विस्तार वाला है, ये 7 कहीं 1 कहीं 5 वगैरह, इस प्रकार लोक 7 राजू के घन प्रमाण होता है। यदि इस प्रकार का लोक ग्रहण नहीं किया जाएगा तो प्रतर समुद्रात केवली के क्षेत्र के साधनार्थ कही गई 2 गाथाएं निरर्थक हो जाएगी, यानी उसके एरिया भी निकालने के लिए जो कुछ गाथा बताएंगे वो भी बेकार की साबित हो जाएगी, क्योंकि उन गाथाओं में कहा गया घनफल लोक को अन्य प्रकार से मानने पर संभव नहीं, अन्य प्रकार यानी उसको अगर वो गोलाकार मानेंगे तो वो एरिया निकालना संभव नहीं। शंका पूछते हैं शंकाकार, वे 2 गाथाएं कौन सी है, ऐसी शंका करने पर कहते हैं, वो गाथाएं और उसका अर्थ बताएंगे अभी यहाँ पर, ऊपर देखो 9 नंबर की गाथा है, उसका अर्थ बाद में देखते हैं। मुहतल समासतम उस्सेध गुणम गुणम च वेधेन घन गणितम जाने चो वेत्तासन संठिये खेते, मुख भाग और तल भाग के प्रमाण को जोड़कर आधा करो, आघा ने आधा करो, पुनः उसे उच्छेद से गुणा करो, पुनः मोटाई से गुणा करो, ऐसा करने पर वेत्रासन आकार से स्थित अधोलोक रूप क्षेत्र का घनफल जानना चाहिए। विशेषार्थ, वेत्रासन आकार वाले अधोलोक के मुख विस्तार का प्रमाण 1 राजू है और तल विस्तार का प्रमाण 7 राजू है, इन दोनों के जोड़ने पर 8 हुए, उसे आधा कर 8 का आधा 4 हो जाएंगे, अधोलोक की ऊंचाई के प्रमाण 7 राजू से गुणा करने पर 28 हुए, इस संख्या को अधोलोक की उत्तर दक्षिण दिशा की मोटाई 7 राजू से गुणा करने पर 196 राजू होते हैं, यही अधोलोक का घनफल है। 7 + 1 = 8 किया, 8 का आधा करके एवरेज 4 मिला, यानी पूर्व पश्चिम 4 मिला, दक्षिणोत्तर सर्वत्र 7 है, 128वें हाइट सात है उससे गुना करें 196 होते हैं। यानी जो वितरा से ना ऐसा जो परंतु गोलाकार नहीं है, स्क्वायर रूप है नीचे और ऊपर, तो ये 196 आते हैं। अब आगे बढ़ते 10 नंबर की गाथा। मूलम अच्छेन गुणम मोसहिद दमुसेद कदि गुणिदम घन गणिदम जाने चो मुहिंग संठान के तम्मी। मूल के प्रमाण को मध्य के प्रमाण से गुणा करो, पुनः मुख सहित अर्ध भाग को उच्छेद की कृति अर्थात वर्ग से गुणा करो। ऐसा करने पर मृदंग के आकार वाले क्षेत्र में प्राप्त घनफल जानना चाहिए। ऊर्ध्व लोक बीच में मोटा और ऊपर नीचे सकड़ा होने से मृदंगाकार क्षेत्र कहलाता है। इस मृदंगाकार ऊर्ध्व लोक का मूल भाग संबंधी विस्तार एक राजु से मध्य भाग के विस्तार पांच राजु को गुणा करने पर 5 + 1 = 5 हुए। उसमें मुख विस्तार एक राजु को जोड़ने पर 5 + 1 = 6 आधा करने पर 3 रहे। इसे ऊंचाई 7 के वर्ग से यानी 7 × 7 = 49 से गुणा करने पर 49 × 3 = 147 राजु, ये तो प्रतर राजु हो जाए, घन राजु हो जाए। यही 147 राजु ऊर्ध्वलोक का घनफल है। इस प्रकार अधोलोक और ऊर्ध्वलोक के घनफलों को जोड़ने पर 196 + 147 343 राजु सर्वलोक का घनफल होता है। ये घन राजु में उत्तर आ गया। ये समझ में आती बात? उसको कहाँ वेत्रासन और मृदंगाकार, परंतु केवल सामने वाला आकार बताने के लिए, परंतु उसने वेत्रासन को गोलाकार
नहीं
माना था और इसको स्क्वायर रूप में मान रहे। नाम तो वही दिए उन्होंने।
तो बात में इंजीनियर तक हो जाएगी कह रहे
हैं। दो गाथाएं तभी जो ओरिजिनली चली आई थी वो बेकार हो जाएगी। ओरिजिनल जो ग्रंथों में गाथा चली आई थी वो बेकार हो जाएगी। आगे बढ़े, विशेषांक हो गया अभी हमारा। और उक्त प्रकार के इस लोक का
गाथाएं जो लिखी गई वो बंदर नहीं लिखी होगी,
गंधर के सूत्र होते हैं, गाथाएं है बीच में पता ही होती है। और उक्त प्रकार के इस लोक का हेठा मध्ये वरिम वेत्तासन झल्लरी मुइंग निभो इत्यादि इस प्रथम गाथा के साथ भी विरोध नहीं है, क्योंकि एक दिशा में वेत्रासन और मृदंग का आकार दिखाई देता है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, शंकाकार ने जो माना था मृदंगाकार तो पूरा गोलाकार माना था। अब यहाँ कहते हैं कि उस गाथा के साथ तो विरोध आएगा, गाथा में ही वेत्रासन और मृदंगाकार बताया, तो कहते उसका केवल फ्रंट व्यू बताया। दक्षिणोत्तर सर्वत्र 7 राजू है ये बात शंकाकार ने स्वीकार नहीं की थी। समझ में आई बात? मूल में जो गाथा बताई थी वहां पर भी वेत्रासन और मृदंगाकार कहा था, परंतु वो केवल पूर्व पश्चिम जो उसका हमें फ्रंट व्यू दिखता है उसकी अपेक्षा से बताया, इसलिए उस गाथा के साथ भी विरोध नहीं आता। उसको भी वेत्रासन तो कह सकते हैं, परंतु उसने शंकाकार ने माना हुआ गोलाकार वेत्रासन नहीं समझा। यदि कहा जाए तीसरी लाइन, ये अभी बताए गए लोक में मध्य भाग पर झल्लरी का आकार नहीं है, सो भी नहीं है। आप कहेंगे उस गाथा में तो झल्लरी बताई है, नहीं वो तो खाली जैसा बताया था, या झांझ जो होता है झल्लरी नहीं झांझ या खाली झल्लरी झांझा, समझ में? वो वाद्य होता है ना, आपने सुने का झांझा होता है उसकी, जो दो ऐसे पकड़कर एक दूसरे के ऊपर ऐसा बजाते झांझा, उसको झल्लरी कहते हैं। तो कहते कि ऐसा अगर आप मानोगे ऐसा एक राज्य होगा और ऐसा सात राज्य होता है तो वहाँ झल्लरी कहाँ आएगी, प्रश्न ये है। तो यदि कहा जाए कि अभी बताए गए लोक में मध्य भाग पर झल्लरी का आकार नहीं है, सो भी नहीं है, क्योंकि मध्य लोक में स्वयंभू रमन समुद्र से परिक्षिप्त तथा चारों ओर से असंख्यात योजन विस्तार वाला और 1,00,000 योजन मोटाई वाला यह मध्यवर्ती प्रदेश चंद्रमंडल की तरह झल्लरी के समान दिखाई देता है। यानी जो एरिया बीच वाली है स्वयंभू रमन समुद्र की, उसके द्वारा जो प्रतिक्षिप्त जो एरिया है और उसके चारों ओर असंख्यात योजन पड़े हुए हैं, वो झल्लरी के समान दिखाई देता है। और दृष्टांत सर्वथा दार्ष्टांत के समान नहीं होता, यानी वो सर्वथा लागू नहीं होता है, अन्यथा दोनों को ही अभाव का प्रसंग आ जाएगा। यानी दृष्टांत एक देश लागू होता है, जैसे हम कहते हैं ना इसका मुख चंद्रमा के समान है, तो क्या चंद्रमा के समान उसके ऊपर मुख के ऊपर दाग है ये बताना है, ये क्या वो तो 15 दिन में कम ज्यादा होता है वो बताना है, वो तो नहीं बताना है। यदि कहा जाए ऊपर बताए गए इस लोक के आकार में ताल वृक्ष के समान आकार संभव नहीं है, सो भी नहीं, क्योंकि एक दिशा से देखने पर ताल वृक्ष के समान संस्थान दिखाई देता है। ताल वृक्ष ने जो ऐसा जाता है ना, नीचे एक ट्रंक ऐसी होती फिर ऐसा ऐसा होता है, ये पुरुषाकार जो कहते फ्रंट व्यू जिस करे तो ये भी दिखाई देता है, क्योंकि एक दिशा से देखने पर ताल वृक्ष के समान संस्थान दिखाई देता है। और लोयसे विखम्बो चौपयारो ये होयिणायोगो इत्यादि तीसरी गाथा के साथ भी विरोध नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर भी पूर्व और पश्चिम इन दोनों ही दिशाओं में गाथोक्त चारों ही प्रकार के विषकम्ब देखे जाते हैं। विषकम्ब ने उसकी चौड़ाई हीनाधिक जो है 7 है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 1 है, देखी जाती है। तथा लोक के दक्षिण भाग में सर्वत्र 7 राज्यों का बाहल्य भी कर्णान योग सूत्र के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि कर्णान योग सूत्र में 7 राज्यों के बाहल्य के विधान व प्रतिषेध का अभाव है, इसलिए अभी कहे गए आकार वाला ही लोक है ऐसा स्वीकार कहना करना चाहिए। शंका, यहाँ पर शंकाकार कहता है कि असंख्यात प्रदेश वाले लोक में अनंत संख्या वाले जीव कैसे रह सकते हैं, ये उनकी शंका है। यदि एक आकाश के प्रदेश में एक ही जीव रहे तो भी सर्वलोक में असंख्या जीवों की स्थिति होकर अवशिष्ट अन्य जीवों का अलोकाकाश में रहना प्राप्त होता है, अथवा उन शेष जीवों का अभाव प्राप्त होता है, किंतु उनका अभाव है नहीं, क्योंकि उक्त कथन का जीव अनंत है सूत्र के साथ विरोध आता है। इन्हें सूत्र में बताया कि जीव अनंत है और लोकाकाश तो एक असंख्यात प्रदेशी एक ही जगह है, तो उसमें अनंत जीव कैसे आ जाते हैं, एक प्रदेश पर एक जीव ऐसा मानो तो भी ये बात नहीं सिद्ध होती।
अभी आपने देवलाली में
यही अभी यही विषय दिया था बहुत विस्तार से,
अवगाहना एक दूसरे को देते हैं वो मानते नहीं,
एक जीव भी दूसरे जीव को अवगाहना देता है, पुद्गल दूसरे पुद्गलों को अवगाहना देता है, तो वहाँ वो बहुत चर्चा चली थी कि फिर आकाश का ही क्यों उसका विशेष गुण कहते। देखो इस जीव अनंत सूत्र के साथ विरोध आता है और न अलोक आकाश में भी शेष जीवों का रहना बनता है, क्योंकि ऐसा मानने पर लोक और अलोक के विभाग का अभाव प्राप्त होता है, ऐसे विभाग ही नहीं बनेगा, क्योंकि जहाँ छह द्रव्य पाए जाते हैं उसी को तो बताया था। दूसरी बात यह है कि यह भी है कि यानी शंकाकार ही पूछ रहा है कि कैसे रहते, फिर ऐसा हो तो यह ऐसा दोष आएगा, ऐसा हो तो ये दोष आएगा, ऐसा कह रहा है। दूसरी बात यह भी है कि आकाश के एक प्रदेश में एक जीव रहता भी नहीं है, क्योंकि उसको ये भी मालूम है कि एक जीव की छोटी में छोटी अवगाहना तो घनांगुल के असंख्यात विभाग होगी, तो एक प्रदेश में एक जीव नहीं रह सकता, ये भी उसको स्वीकार है, क्योंकि एक जीव की जघन्य अवगाहना भी अंगुल के असंख्यात विभाग मात्र होती है, ऐसा वेदना खंड के वेदना क्षेत्र विधान नामक अनुयोग द्वार में प्रतिपादन किया है। इसलिए यदि लोक के मध्य में जीव रहते हैं तो वे लोक के असंख्यात वे भाग मात्र ही होना चाहिए। अब यहाँ पर इस शंका का परिहार करते हैं। शंकाकार का उक्त कथन घटित नहीं होता, क्योंकि उक्त कथन के मान लेने पर पुद्गलों के भी असंख्यात पने का प्रसंग आ जाता है। यदि वहाँ पर भी मानेंगे प्रदेश पर एक पुद्गल है तो वो भी असंख्यात मानने पड़ेंगे। शंकाकार उस पर प्रतिशंका कहता है, पुद्गलों के असंख्यात होने का प्रसंग कैसे आ जाएगा? उस शंका का परिहार इस प्रकार है, लोकाकाश के एक एक प्रदेश में यदि एक एक ही परमाणु रहे तो लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण ही परमाणु होंगे और शेष पुद्गलों का अभाव हो जाएगा, क्योंकि जिन पुद्गलों का अवकाश नहीं मिला उनका अस्तित्व मानने में विरोध आता है तथा उन लोक मात्र परमाणुओं के द्वारा कर्म शरीर घटपट और स्तंभ आदि को में से एक भी वस्तु निष्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि ये सभी जो चीजें वो अनंत परमाणुओं के स्कंद रूप हैं, क्योंकि अनंतानंत परमाणुओं के समुदाय का समागम हुए बिना एक अवसन्नासन्न संज्ञ भी स्कंद का होना संभव नहीं भी बताया। देखो दो चार पांच संख्यात जिसको होंगे ना अणुओं का जो स्कंद हो सकता है, असंख्यात अणुओं का स्कंद होता है, जैसे अनंतानंत अणुओं के स्कंद को अवसन्नासन्न कहेंगे, फिर उसके वो आठ आठ गुणा वाले है ना, अवसन्नासन्न फिर सन्नासन्न त्रटरेणु त्रसरेणु रसरेणु वगैरह वो सब भागो भूमि के तीनों के बाद फिर कर्म भूमि के फिर लेख फिर जू लीक फिर जू कोई यो आता है ना, नहीं बीच में सरस और फिर यो और फिर उच्छेद अंग, पहले जू फिर लीक फिर सरसो फिर यो सरसो सरसो। हाँ शंका, एक भी वस्तु निष्पन्न नहीं हुए तो भी क्या हानि है? नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर समस्त पुद्गल द्रव्य की अनुपलब्धि का प्रसंग आता है, यानी कोई भी स्कंद नहीं मानने पड़ेंगे हम, तथा सर्व जीवों के एक साथ ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति का भी प्रसंग प्राप्त होता है। विशेषण, यहाँ पर समस्त पुद्गल द्रव्य की अनुपलब्धि का जो दूषण दिया है उसका अभिप्राय यह है कि घटपटादि कार्यों के देखने से ही कारण रूप पुद्गल परमाणुओं के अस्तित्व का अनुमान होता है। शंकाकार के कथनानुसार जब किसी भी वस्तु की निष्पत्ति न होगी तो उन कार्यों के निष्पादक कारण धर्म वाले परमाणु है यह कैसे जाना जा सकेगा? अतएव घटपटादि कार्यों की निष्पत्ति के अभाव में पुद्गल द्रव्य के अभाव का प्रसंग आ जाएगा तथा सर्व जीवों के एक साथ केवल ज्ञान की उत्पत्ति के प्रसंग प्राप्त होने का जो दूषण दिया गया है उसका अभिप्राय यह है कि लुक जी और यो बीच में सरसो नहीं गया उन्होंने जू लीक जू और यव, जब लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण असंख्यात ही परमाणु हो गए तो उनसे प्रथम तो एक कार्बन शरीर की उत्पत्ति नहीं होगी। यदि थोड़ी देर के लिए यह कल्पना कर भी ली जाए असंख्यात परमाणुओं से एक कार्बन शरीर या कर्मपिंड बन भी जाता हो जो कि जीव के ज्ञानादि गुणों के आवरण करने में समर्थ है तो भी वह किसी एक ही जीव के गुणों का आवरण कर सकेगा, अनंत जीवों का नहीं। इस प्रकार से भी सभी जीवों का आवरक कर्म का अभाव होने से केवल ज्ञान की उत्पत्ति का प्रसंग प्राप्त होता है, अथवा किसी एक जीव के द्वारा उस कार्बन शरीर का शुक्ल ध्यानाग्नि से विनाश किए जाने पर समस्त ही जीवों के केवल ज्ञान की उत्पत्ति का प्रसंग आता है, क्योंकि उसने असंख्यात ही परमाणु मान लिए। 24 पेज पर इस प्रकार का अति प्रसंग दोष न होवे, इसलिए अवगाह्यमान जीव और अजीव द्रव्यों की सत्ता, अवगाह्यमान है ना, अन्यथा न बन सकने से क्षीर कुंभ का मधुकुंभ के समान अवगाहन धर्म वाला लोकाकाश है ऐसा मान लेना चाहिए। देखो इसी की बात बता रहे विशेषार्थ में, जैसे क्षीर कुंभ का मधुकुंभ में अवगाहन हो जाता है अर्थात मधु से भरे हुए कलश में तत्प्रमाण वाले दूध से भरे हुए कलश का दूध डाल दिया जाए तो समस्त दूध उसी में समा जाता है। मधु समझते हैं शायद, इन्हें मधु से भरे हुए कलश में उतना ही दूध तत्प्रमाण दूध डालने पर वो समग्र उसमें समा जाता है। ऐसी अवगाहन शक्ति देखी जाती है, उसी के समान आकाश की भी ऐसी अवगाहना शक्ति है, असंख्य प्रदेशी होते हुए भी उसमें अनंत जीव और अनंतानंत पुद्गलों का अवगाहन हो जाता है। इसलिए अब हम अवगाहन लक्षण से प्रसिद्ध लोकाकाश के अवगाहन महात्म्य को आचार्य परंपरागत उपदेश के अनुसार कहते हैं, वह इस प्रकार है। उच्छेद घनांगुल के असंख्यात भाग मात्र, देखो उच्छेद अंगुल है नहीं सूच्यंगुल, और उस सूच्यंगुल से जो अंगुल घन बनता है उसको उच्छेद घनांगुल कहा। तो उच्छेद घनांगुल के असंख्यात भाग मात्र क्षेत्र में, देखो उच्छेद अंगुल है नहीं सूच्यंगुल, जिसको हम सूच्यंगुल कहते हैं वो उच्छेद अंगुल है, सूच्यंगुल का घन जिसको हम कहते हैं घनांगुल,
घनांगुल
सूच्यंगुल का घन। ऐसा अदर से अलग से क्यों कहा, क्योंकि अंगुल भी तीन प्रकार के होते हैं, प्रमाण अंगुल, उच्छेद अंगुल और आत्मांगुल। तो कौन से अंगुल का घन करना है, तो उच्छेद अंगुल का घन करना है। उसके असंख्यात भाग मात्र क्षेत्र में सूक्ष्म निगोदिया जीव की जघन्य अवगाहना है। ये हमने जीव के अवगाहना में ये बातें देखी थी। हाँ सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त की, उस क्षेत्र में स्थित घनलोक मात्र जीव के प्रदेशों में से, यानी वो जीव के प्रदेश तो घनलोक मात्र ही होते हैं, यानी जितने 343 घन राज्यों में जितने प्रदेशों की संख्या है उतने ही आत्मा के प्रदेश है, परंतु वो अभी कितने में संकुचित हो गए हैं, उतने असंख्यात विभाग। उस क्षेत्र में, ये क्षेत्र में नहीं अवगाहना बता रहे, उस क्षेत्र में स्थित परंतु जीव के कितने प्रदेश है, घनलोक मात्र जीव के प्रदेशों में से प्रत्येक प्रदेश पर अभोव्य सिद्धों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र हो करके स्थित ये जीव के प्रत्येक प्रदेश पर क्या क्या है वो बताए। वो जीव के प्रदेश कितने लोक मात्र है, वो कितने क्षेत्र में स्थित है, तो घनांगुल के असंख्यात भाग में स्थित है।
जीव के प्रत्येक प्रदेश
अभी क्या है वो बता रहे, नहीं क्या है वो बता रहे, सिद्धों से असानंत विभाग मात्र होकर के स्थित औदारिक शरीर के परमाणुओं का वही क्षेत्र अवकाश पने को प्राप्त होता है। ये औदारिक शरीर के परमाणु की संख्या बताए।
मुझे ये जीव के असंख्यात प्रदेश है, वो जगन या उगाना में स्थित है, तो उसके एक एक प्रदेश पर इतने सारे
औदारिक क्षेत्र, औदारिक शरीर के परमाणु कितने स्थित है वो बता रहे।
अच्छा, एक प्रदेश में आत्मा के कितने प्रदेश,
वो बात यहाँ नहीं है ले रहे, औदारिक शरीर के, मैंने जीव के एक एक प्रदेश पर औदारिक शरीर के परमाणु कितने उसकी बात बताई। अवकाश पाने को प्राप्त होते हैं, वो एक दूसरे को अवकाश देते हैं ना, पुनः औदारिक शरीर के परमाणुओं से अनंत गुणे, क्योंकि औदारिक शरीर के परमाणुओं से वैकिरिक आहारक के असंख्यात गुणे थे, परंतु यहाँ औदारिक तेजस और कारमाण है, तो औदारिक से तेजस के अनंत गुणे हो गए। औदारिक शरीर के परमाणुओं से अनंत गुणे, तेजस शरीर के परमाणुओं की भी उसी क्षेत्र में अवगाहना है, अवगाहना बताया ना, तथा ये तो आकाश के अवगाहना के महात्म बता रहे, परंतु एक दूसरे को अवकाश दिए बिना वो बात कैसे सिद्ध होगी, वो एक दूसरे को भी अवकाश तो दे ही रहे।
तेजस का लिखा है,
तेजस अलग अलग पद्धति से लिखने की पद्धति, तेजस तेजस लिखते, तेज ये लिखा है, तेजस 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 कहते हैं, तेजस तो नहीं, तेजस तथा पूर्व कहे, पूर्व में कहे गए तेजस ऐसा लिखना, परमाणुओं से अनंत गुणे उसी जीव के द्वारा मिथ्यात्व अविरति आदि कारणों से संचित। देखो जीव ने जो कर्म बांधे ना उसके कारण भी बताए, और प्रत्येक प्रदेश पर अभव्य सिद्धों से अनंत गुणे तथा सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र कर्म परमाणु उस क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए उन कर्म परमाणुओं की भी उस ही क्षेत्र में अवगाहना है। जहाँ पर जीव के प्रदेश इतने, लोक प्रमाण प्रदेश जितने क्षेत्र में है, वहीं औदारिक के परमाणु, तेजस के परमाणु और कारमाण के परमाणु। पुनः औदारिक शरीर तेजस का शरीर लिखा है यहाँ पर, फिर भी कारमाण शरीर के विस्तृ सोपचय उनका, जो कि प्रत्येक सर्व जीवों से अनंत गुणे हैं और प्रत्येक परमाणु पर उतने ही प्रमाण हैं, उनकी भी उसी क्षेत्र में उगान है। एक एक औदारिक आदि शरीरों के एक एक प्रदेश पर या एक एक परमाणु के साथ उसके अपने अपने विशेषोप से अनंत गुणे हैं। कितने अनंत गुणे? सर्व जीव राशि से अनंत गुणे। इस प्रकार एक जीव से व्याप्त अंगुल के असंख्यात भाग मात्र उसी जघन्य क्षेत्र में समान अवगाहना वाला होकर के दूसरा जीव भी रहता है, यानी अभी उसके भी इतने सब कर्म उसके विश्रसोप से अलग हो, यानी उसके अवगाहना का महात्म्य, यानी वो कितना हो सकता है उसकी बात यहाँ चल रही ना। हाँ, आकाश के अवगाहना की शक्ति कितनी है उसकी बात चल रही। तत्पश्चात दूसरा कोई जीव उसी क्षेत्र में उसके मध्यवर्ती प्रदेश को अपनी अवगाहना का अंतिम प्रदेश करके उत्पन्न हुआ। इस जीव की भी अवगाहना में समान अवगाहना वाले अनंतानंत जीव रहते हैं, यानी उसके मध्य प्रदेश को इसका अंतिम, यानी ये किसी का यहाँ मध्य प्रदेश है तो उसकी यहाँ अंतिम प्रदेश किया उसने। इस प्रकार यहाँ भी पूर्व के समान प्ररूपण करना चाहिए, अर्थात उस क्षेत्र में स्थित घनलोक मात्र जीव के प्रदेशों में से प्रत्येक प्रदेश पर अनंत औदारिक शरीर के परमाणु, औदारिक शरीर से अनंत गुणे तेजस शरीर के परमाणु और इससे अनंत गुणे कार्मण शरीर के परमाणु भी है, पुनः इन तीनों शरीरों के सर्व जीवों से अनंत गुणित विसृतोपचय भी उसी प्रदेश पर विद्यमान है। यही रुकते हैं, अभी आगे भी बढ़ना है परंतु कल बढ़ेंगे। अभी अवगाहना का विस्तार वहाँ बहुत विस्तार से चला था विषय, आप थे तभी चला था क्या योग मार्ग में हुआ था? नहीं, अवगाहना वाली बात आई थी वहाँ। जवानी की ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नम सदा देत हो। मैं भाई।